मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम् तथा प्याज्ञां करोमि ते। सवेरे हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार राजा कंस विविध मनोरथ कर रहा था, केशी को भेज करके, और इसके बाद चारुण मुष्टिक सल तोसल आदि के साथ बैठा, हाथियों के महावतों को बुलाया, सचिव को बुलाया, और सबसे ये योजना बना रहा था कि ऐसा करो कि यहाँ पर मल्ल रंग पहलवानी का फेस्टिवल करो और इसमें बुलाना है कृष्ण बलराम को, और यहाँ आने पर तुम लोग ऐसे ऐसे वध कर दो। खास करके कुबलया पीड़ हाथी को जो चलाता था उस महावत से उसने विशेष जोर दे रखा और कहा कि यदि हाथी से वे लोग न मारे जाए तो फिर पहलवान मारेंगे, जब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबले या पीर मार दिया जाएगा तो फिर कहता है फिर पहलवान मारेंगे। सो भय हमेशा बना रहता था, कंस भयात, कंस को भगवान से जितना द्वेष था उससे कई गुना ज्यादा भय था, शिशुपाल को द्वेष था, खाटी बिल्कुल दोस्त और भय बिल्कुल नहीं था, कृष्ण से उसको बिल्कुल भय नहीं था, राजसूय सभा में भरी सभा में लगा गाली देने भगवान, मरने का कोई डर नहीं था, और कंस को मरने का बहुत भय, ये मरना चाहता नहीं, द्वेष वैसे देखा जाए तो था, बीज तो उसका द्वेष ही है लेकिन भय अधिक था। इस प्रकार वह कह रहा था उन लोगों से, बाद में अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके और बहुत ही मैत्री भाव से ऊपर से दिखा करके कहने लगा कि आप चले जाइए दोनों को लाइए। अंतिम वाक्य कंस का है, धनुर्मुख निरीक्षा निरीक्षणार्थम, धनुर्मुख निरीक्षार्थम द्रष्टुम जदु पुरश्रियम, आप जाकर कहिएगा धनुष यज्ञ है, उत्सव है, सब लोग आए निरीक्षणार्थी, धनुष मुख को खुद देखेंगे, धनुष यज्ञ को अच्छी तरह से देखेंगे और जदुपुर की शोभा देखेंगे। अभी एक इसकी चालाकी थी, अक्रूर जी से कहा कि जाकर कहिएगा कि जदुपुरी है और नंद भी तो जादव ही है, जैसा कि नारद जी ने कहा था वसुदेव जी के ज्ञाति हैं, भाई हैं, तो जादव हो करके जदुपुर की स्त्री नहीं देखेंगे क्या, और तो जानता था कि वास्तव में मधुपुर है, मधु का अर्थ मधु दैत्य, पहले वहां रहा था इसीलिए मथुरा को मधुपुरी कहा था, अथवा जादव का एक भेद है मधुवंशी वे लोग रहते थे इसलिए इसको मधुपुरी या मधुपुर कहते हैं, लेकिन कंस अपने भाव का संग गोपन कर रहा है, छिपा रहा है, वो कह रहा है कि जादव नगरी है इसलिए सब जादव आवे देखने के लिए, ये कहिएगा, अब हिम्मत कहिएगा कहीं भूल करके कि कंस की राजधानी है, राजा कंस के से भी भेंट होगी ऐसा नहीं कहा, जदुपुर स्त्री बोलने में बहुत प्रवीण था, कौन शब्द कहाँ बोल दिया जाएगा उसका क्या असर होगा ये बहुत सतर्क थी, दो बात कहिएगा बस, धनुर्मुख निरीक्षार्थम दृष्टिम जदुपुर, वो तो बस इतना सुनते ही चल देंगे। तब अक्रूर जी कहते हैं, अक्रूर जी इसके मनोरथ को सुनते सुनते उब गए थे, कहता था कृष्ण बलराम को मारूंगा तो इसके बाद वसुदेव को मारूंगा, नंद को मारूंगा, जितने जादव हैं सबको मारूंगा, और जितने भी देवताओं के पक्ष के राजा हैं जैसे द्रुपद युधिष्ठिर इन सबका वध करूंगा, और इसके बाद हम रहेंगे, आप रहेंगे और हमारे ससुर रहेंगे, खूब फूल कर पृथ्वी भोग करेंगे, कोई रहेगा नहीं, सब मार दिए जाएंगे, हमारे आदमी रहेंगे, इस तरह का प्लान कर। तो अक्रूर जी क्या कहते हैं ये बात विचार लिए है यहाँ पर क्रूर वच, अक्रूर जी कहते हैं राजन आपने जो विचार यहाँ दिया मनीषी तम, अपने मनीषा से अपने दिमाग से आपने जो निश्चय किया मनीषा से किया इसको मनीषीतम का सत्य है, आपका ये सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्व अवध्य मार्जनम, अवध्यम का अर्थ यहाँ मृत्यु, आप अपनी मृत्यु का परिहार करने के लिए मृत्यु से बचने के लिए जो सोच रहे हैं ये वास्तव में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सद्र या सम्यक दो पाठ हैं, सद्र का अर्थ भी समुचित होता है और सम्यक का अर्थ भी समुचित होता है, तो आपने जो सोचा वो बहुत अच्छा किया, अरे कौन होगा जो अपनी मृत्यु नहीं टालना चाहेगा, बहुत अच्छा, लेकिन हित का कुछ उपदेश कर रहे हैं कि परंतु सिद्धि सिद्ध सिद्धयो समम कुर्यात्, व्यक्ति को चाहिए कि अगर सफलता मिले और सफलता न भी मिले तब भी सम रहना चाहिए, यही तो उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि दैवम ही फल साधनम, मनुष्य का विचार या उसकी मनीषा बुद्धि इस काम नहीं करता है, होता है वही जो ऊपर से लिखा हुआ है। अब वास्तव में इस संसार में दो धारा चलती है, एक तो ईश्वर इस जगत का निर्माण किया है तो किसको क्या देगा, कैसे जिलाएगा, खिलाएगा, कब मार देगा वो जानता है, जो दूसरी बात यह है कि वो रच रच करके इस जगत में सभी जीवों के कर्म को देखता है, तो कर्म के अनुसार किसी को मृत्यु देता है, शरीर देता है, भोग देता है। तो भगवान का प्लान है जीवों के कर्म के अनुसार। तो जीव चाहे कितना भी प्लान करे, इच्छा करे, सफलता दैव पर ही निर्भर है। व्यक्ति का पुरुषार्थ काम नहीं करता है, अंततः दैव ही विजयी है। तो महाराज आप तो ठीक कर रहे हैं, इस तरह से जो सोच रहे हैं उसमें अक्रूर जी सब कह दिए कि कृष्ण बलराम को मारने का, यह करने का, वह करने का, जो आप विचार कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु इतना अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परंतु ये तामन अभिनिवेशों न कर पाते। जितना आप एकदम खो गए हैं कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये ऐसे मार करके, और हम रहेंगे, हमारे ससुर रहेंगे, हमारे मित्र रहेंगे, ये रहेंगे, बस कोई नहीं रहेगा हमारे को बाधा देने वाला, हमको खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, राज्य करेंगे, कभी मरेंगे नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा इतना अभिनिवेश नहीं करना चाहिए, अभिनिवेश होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा। श्रीपद सुंदर स्वामी जी कहते हैं तथापि ये तावन अभिनिवेश न करता हुए, इतना ज़्यादा अभिनिवेश मत कीजिए। अभिनिवेश का अर्थ होता है अभित नितराम वेश अभिनिवेश, पूरा पूरा तरह से आदमी विचारों में खो जाए, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा। केवल प्लान बनाता रहे, ऐसा नहीं, कुछ ईश्वर के प्लान को देख करके संतोष करना चाहिए कि भगवान की इच्छा होगी, उनका जो प्लान है वही चले, हम क्यों प्लान करें। ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। इसीलिए कहते सिद्धि असिद्धि में सम रहना चाहिए, क्योंकि दैव ही फल देता है, ईश्वर ही फल देता है, अभिनिविष्ट नहीं होना चाहिए। इस अभिनिवेश के विषय में एक छोटी सी कथा कल मैं संस्कृत किताब में पढ़ा था। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, वो भीख मांगता था, भीख मांग मांग करके इकट्ठा किया था कुछ आटा या सत्तू जमा किया था कुछ, और जहाँ सोया था टूटी फूटी पलंग पर, खट पर, तो ऊपर एक सिकर छीके में लटका दिया था ऊंचा पर। तो वो सोच रहा था, ओ तो मेरे पास इतना आटा हो गया है, मैं इसको बेचूंगा, बेच करके फिर उससे ये सामान खरीदूंगा, तो फिर उसको बेचूंगा, फिर उससे ये सामान खरीदूंगा, उसको बेचूंगा, तो मेरे पास पैसा कुछ हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो मैं इसके बाद विवाह करूंगा, ऐसे रहूंगा, इसके बाद पुत्र होगा। खूब मनोरथ किया एक डेढ़ घंटा तक, बच्चे को बहुत सुशील बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और कभी यदि शैतानी किया बच्चा तो उसको दह लात, उसको मैं लात से मारूंगा, ऐसा कहकर लात उठाया और लात लग गया उस घड़े पर जिसमें वो रखा गया, और घड़ा फूट गया, भर और सब भर से गिर गया सारा आटा, सारा मनोरथ वहीं धरा गया, सारा विवाह हो गया, लड़का हो गया, लड़के को लात भी मार दिया, सब ठीक हो गया। इतना व्यक्ति को नहीं खो जाना चाहिए। समझना चाहिए भगवान का कुछ प्लान है जगत रचने में, ऐसा नहीं है कि वो रच दिए और बस हमको छोड़ दिए कि तुम अपना प्लान करते रहो। देखना चाहिए कि ईश्वर की कुछ इच्छा है, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। कंस की इच्छा कितनी विरुद्ध जा रही थी, यह करूँगा, ऐसे रहूँगा, मरूंगा नहीं, भोगूंगा, ये करूँगा। तो अक्रूर जी बहुत हित का उपदेश कर रहे हैं। शेखर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, जदर्थम एतावंतम कालम अस दुष्टस्य अपि अनुकूले न सतामय तोषितम तत्फलम इदम प्राप्त। अक्रूर जी सोचे एतावंतम कालम, इतने काल तक मैं जिस उद्देश्य से इस दुष्ट की सेवा कर रहा था, भगवान की कृपा से वह फल प्राप्त। जैसे ही उसने कहा कि कृष्ण बलराम को लाइए इस रथ से, अक्रूर जी का मन तो अब चला गया गोकुलवास, नंद गांव चला गया। तो सोचने लगे ओ अब फल मिला, बहुत प्रसन्न हुए थे। अतः अनेन मम तत्वतो हितमेव कृतम। अक्रूर जी सोचने लगे कि वास्तव में इसने तो मेरा हित ही किया, मुझे रथ दे करके और गोकुल भेज रहा है तो मेरा हित किया, तो मया अपि अस्य हितमेव वक्तुं युज्यते। तो अक्रूर जी ने सोचा कि मेरा भी कर्तव्य है कि कंस का हित ही करना चाहिए, इसका जिसमें हित है वही बात बोलनी चाहिए, इसीलिए हित का उपदेश कर रहे, क्योंकि इसने मेरा हित किया इसलिए इसका भी हित करना चाहिए। अथवा किंचित हिते अनुक्ते सति औदास्यम आशंक्य विश्वासम अकृत्वा यदि माम अयम न प्रस्थापय अयम न प्रस्थापिष्यते तरहि मम दीर्घासा न पूर्यत इति किंचित हितम वाच्यम इति आशयेन आह। अथवा कुर्ज ने ये सोचा कि इसके प्रति मैं कुछ हित की बात नहीं कहूँगा तो ये शायद उदासीन हो जाएगा, सोचा कुछ बोल नहीं रहा है, मैं जो प्लान बताया ये बताया तो कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब है इसका मन जाने का है नहीं, तो हो सकता है कि फिर अपना विचार रद्द कर दे कंस का कि नहीं नहीं इसको नहीं भेजेंगे, बहुत महसूस मनहूस आदमी बहुत कुछ बोला नहीं, उसका विचार बदल सकता है, तो हो सकता है हमको न भेजे, इसीलिए उसकी बातों में कुछ हाँ में हाँ मिला करके हित का उपदेश कर रहे। तो कंस को विश्वास हो जाए कि मेरे हित अहित के विषय में अक्रूर पूरा तथ्य लगे हुए, इसलिए पहले कहते हैं बिल्कुल ठीक कह राजन संबोधन कर राजन मनीषितम शब्दक, आपका विचार बिल्कुल ठीक है। राजन शब्द से तत्पर लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी राजनीति द्वाभ्यम, हे राजनीति राज्यस्य राजदेहस्य च रक्षार्थम इदम उचितम एवेति भाव। राजन शब्द के द्वारा यह ध्वनित हो रहा है कि अक्रूर जी कहते हैं आप राजा हैं तो राज्य की और राजदेह की रक्षा करनी ही चाहिए, और यदि दो व्यक्ति को मार करके राजा की रक्षा हो जाती है तो कौन अनुचित है, ठीक है ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं, ठीक ठीक आप राजा है ना, कोई आइडेंटिटी आदमी तो है नहीं, उसके जीने मरने पर कोई बात नहीं है, आपका ये राजदेह बहुत दुर्लभ है और राज्य भी बहुत विस्तार से है, इसीलिए राज्य की रक्षा के लिए और राजदेह की रक्षा के लिए ये जो आपने विचार किया है बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसको सीमित कर रहे हैं, आप अपने मृत्यु को टालने का जो उपाय कर रहे हैं ये बहुत अच्छा किए हैं। अक्रूर जी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण बलराम को मारने का जो उपाय आपने किया है वो बड़ा अच्छा किया या सोचा है वो बड़ा अच्छा किया, नहीं नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं, वह विचार कैसे सद्रक हो सकता है, वो उचित हो ही नहीं सकता, इसलिए तब स्व अवध्य मार्जनम, आप अपनी मृत्यु निवारण के विषय में जो कुछ सोच रहे हैं बहुत अच्छा ठीक है, परंतु इतना अभिनिवेश मत कीजिए, सिद्धि में असिद्धि में सम रहना चाहिए, आप ये विश्वास न करें कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई काम सोच समझ कर करना चाहिए और अगर सिद्धि मिले तब भी और न सिद्धि मिले तभी सम रहना चाहिए। तो अक्रूर जी के इनडायरेक्ट में कहने का भाव था मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, परंतु कृष्ण बलराम जब यहाँ आएंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी उल्टा हो जाएगा, अब इतना व्याख्या वो नहीं समझ रहा था, लेकिन अक्रूर जी के कहने का सही अर्थ, अक्रूर जी तो जानते थे कि भगवान आएंगे तो इसका वध कर देंगे, अतः फिर बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अक्रूर जी ने सोचा कि बाद में कृष्ण बलराम यदि आएंगे और पहलवानों का वध कर देंगे हाथी का वध कर देंगे तो कहीं कौन से ये न सोचे कि ये सारा उत्पात अक्रूर करा रहा है, ये नहीं लाया होता तो हमारे आदमी नहीं मारे जाते मथुरा में, यही सब गड़बड़ी किया, तो हो सकता है हमारे प्रति विद्रोह कर जाए, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया अगर ऐसा समय होगा, मान लीजिए भगवान कुबलाई पेड़ हाथी को मार देंगे, पहलवानों को मार देंगे और रजक को मार देंगे और धनुष की रक्षा करने वाले सबको मार देंगे, धनुष जग क्या चल रहा था, धनुष तोड़ कर भगवान ने फेंक दिया, सारा जग खत्म हो गया तो अगर कंस कहेगा कि तुम इन दोनों को लाए इसी से उत्पात हो रहा है तब तो अक्रूर जी कह सकते थे कि राजन मैं उस दिन कहा था कि सिद्ध सिद्धि और समम कुर्या, मैं कहा था ना कि सिद्धि और सिद्धि में सम रहना चाहिए, तो अपनी भविष्य में रक्षा के लिए भी अक्रूर जी ये बात कह रहे हैं, जो भी हो सोचता है अभी ठीक सोचता है अपना मृत्यु टालना चाहिए, लेकिन यहाँ सिद्धि का क्या अर्थ है, वहाँ स्व अवध्य मार्जनम से इसका कनेक्शन है, अपनी मृत्यु टालने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो सकता है न टले, इसको असिद्धि कहेंगे, हो सकता है न टले, और आप कह ही रहे हैं कि राम कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु है तो उनको निकट बुलाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि उनके हाथ से आपको मरना पड़ जाए, जो कुछ भी हो सम रहना चाहिए, अपनी हितैषिता प्रकट कर रहे थे अक्रूर जी जिससे उनको भेजे, अन्यथा भेज रहा है यदि ये अपना इंटरेस्ट न दिखावे तो छनक जाता है, नहीं दूसरे को भेजेंगे, उसको कोई उत्साह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अक्रूर जी अपने भाव को छिपा रहे थे, उनको यह भी भय था कि कहीं हमारे प्रेम भाव को हमारी भक्ति को ये जान जाएगा तब भी नहीं भेजेगा, कहेगा अरे बाप रे ये तो उसका भक्त है ये जाकर के तो और मिल जाएगा इसीलिए भी नहीं भेजेगा, तो दोनों ओर से छिपाना चाहते थे। अब मैं तो तथापि आज्ञा करूँगी थे, अक्रूर जी दिखा रहे थे कि मेरा तो कोई ऐसे खास वहाँ जाने का ऐसा विचार नहीं था लेकिन आपके प्रयोजन के लिए मैं जाऊँगा, जबकि अब कंस का प्रयोजन नहीं था वहाँ जाने के लिए, तो उनका अपना प्रयोजन, ये सब नीति के विचार कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए, तथापि आज्ञा करो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जैसा लगता है कि आज्ञा से ही जा रहे हैं, नहीं तो इनको जाने की अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं, अपने भाव का संगोपन कर रहे हैं। जदवा इदम राज्यो नीति शास्त्र अनुरूपम एवं न तो कर्मादि विचारे तय भाव सिद्धौ असिद्धौ च समह सन कुर्यत कर्मा आचरित निज मनोरथे सिद्धे अति हृष्टो न स्यात् और असिद्धे आर्त न स्यात्। मनोरथ सिद्ध हो तो फूलना नहीं चाहिए और मनोरथ विफल हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए। कुतः दैवम निजादृष्टम एवं फलम भावयति सत्पुरुष कारण किम स्यात् न किमपि अथवा समम इति क्रिया विशेषण समम कुर्यात् समम कुर्यात्। यदि समम शब्द होगा तो क्रिया विशेषण है, सम मनोभाव क्रिया में सफलता असफलता में सम रहना और समह रहेगा तो कर्ता का विशेषण है, दोनों का अर्थ है कहीं है तमह चाहे समह उसी को दिखा रहे हैं। मनोरथान करो तुच्छ जन दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा अज्ञान करो करो मिते। तो मनुष्य विविध मनोरथ करता है और हर्ष शोक से युक्त होता है, कदाचित हर्षेण युज्यते मनोरथ सिद्ध है, जब मनोरथ सिद्ध होता है तब हर्षित होता है और कदाचित शोकेन युज्यते तत् असिद्ध है, मनोरथ सिद्ध नहीं होता है तो शोक से युक्त हो जाता है। अतस्तत्र नैयत्यम नास्ति फले दैवस्य प्राधान्यत्। तो कोई नैयत्यम का अर्थ है निश्चित नहीं है कि सफलता मिलेगी क्योंकि दैव की प्रधानता है फल देने में। तस्मात् तत्र अभिनिवेशो न कार्यति भाव एवं दैवम पुरुष कारण अतिक्रम्यता इति नीति शास्त्रोक्तम परिहृत। नीति शास्त्र कहता है कि दैव को पुरुषार्थ के द्वारा दबाया जा सकता है। कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं शास्त्रों में, कोई कोई कभी कभी पुरुषार्थ की प्रशंसा किए हैं, मनुष्य यदि करे तो वह फल पा जाएगा। महाभारत में एक कथा है, महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे थे वन में और महारानी द्रौपदी से बात हो रही थी, तो महाराज युधिष्ठिर दैव पर बहुत बल दे रहे थे कि जो ईश्वर लिख दिया है वही होता है, लेकिन द्रौपदी जी पुरुषार्थ पर बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसे दैव के भरोसे चुपचाप बैठे रहने से कोई काम नहीं है। वो कह रही थी द्रौपदी जी की बादल वर्षा करता है, ईश्वर वर्षा करता है, लेकिन कोई खेती न करे, खेत न जोते, बीज न डाले तो क्या ऐसे देवता के बरसने से हो जाएगा सब। हमारा जो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, मनुष्य खेत जोते सब करे बीज भी डाले और वर्षा नहीं होगी तब तभी विचार हो रहा था कि तब दैव और पुरुषार्थ दोनों का संयोग करना चाहिए, लेकिन अंततः दैव ही बलवान है। वास्तव में मनुष्य कुछ भी करे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि योजनाएं सफल नहीं होती, तो ये भाव है कि जुजते हर्ष शोका भ्रम, इसका अर्थ है कि महाराज जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति हर्ष से युक्त होता है, विफलता मिलती है तो शोक से। तब मनोरथ असिद्ध्या शोक एवं फलिष्यति इति गुढ़ भाव, कि आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा इसीलिए आप शोक में ही डूबेंगे, ये भाव था गुढ़ का। ऐसे दोनों बात करें कि हर शोक से व्यक्ति युक्त होता है, लेकिन उनका भीतरी भाव यह था क्रूर जी का कि आप तो शोक में ही डूबेंगे क्योंकि आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा। अतः तत्र यद्यपि यत्न कर्तुम न युज्यते, आपको शोक ही होगा, आपका मरण हो जाएगा कृष्ण बलराम के आने से, तो इस कार्य को करना मेरे लिए उचित नहीं है। भीतर भाव रह कर बोल रहे हैं जब मैं जाऊँ कृष्ण बलराम को लाऊं और आ करके वे आपको मार दें तो यह करना उचित नहीं है, तथापि ते आज्ञा करो मैं फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा क्योंकि तद बस वर्तित्वात आज्ञा करो मैं करिष्यामि इति अर्थ, कुछ भी जो भी हो मैं तो आपका दास हूँ आपका अनुचर हूँ इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। एक प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया कि आप जो मनोरथ कर रहे हैं उसमें से एक भी पूरा नहीं होगा, आप खत्म होंगे, पर फिर भी अब मैं आज्ञा का पालन करूँगा तथापि आज्ञा करूँगी। तथा अपि शब्द बता रहे ऐसा होने पर भी यदि ये काम ठीक नहीं है, मुझको जो आप भेज रहे हैं भेज करके कृष्ण बलराम को बुला रही ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जानना तो इनको अपने ही लालसा से था, बहुत खुश थे, लेकिन बाहर से दिखा रहे, क्या करें, यहाँ आने पर तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आपके आज्ञा का पालन करूँगा। एवं तो आज्ञया एव तत्र प्रयामी न तो स्वेच्छया इति स्वस्य भावस्य संगोपनम्। यदि आपकी आज्ञा से ही जा रहा हूँ मैं, अपनी इच्छा से नहीं, ये सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए कर तथापि आज्ञा करूँगी स्वाभिमतम संगोपनार्थम। इस प्रकार अक्रूर जी जो उपदेश किए, यद्यपि यह उपदेश कंस को दिया गया है, लेकिन हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पर इसको लागू करना चाहिए। शास्त्र में इसीलिए उपदेश दिए गए हैं। एक बार बम्बई में मैं कथा किया था शुरू में, भगवान के जन्म की कथा, तो वसुदेव जी उस कथा में उपदेश दे रहे थे कंस को, तो कंस नहीं माना, वो सारा उपदेश विफल हो गए। तो बाद में एक भक्त ने प्रश्न किया कि जब कंस उपदेश को माना ही नहीं, तो इस उपदेश को भागवत में रखने की क्या आवश्यकता है, वेदव्यास जी ने इस उपदेश को क्यों रखा। उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि वेदव्यास जी कहते हैं कि भागवत पढ़ो, ये करो, तो वो सब आज्ञा हम लोगों के लिए, वास्तव में कंस के लिए आज्ञा नहीं थी, उपदेश नहीं था, वो उपदेश जेम करते हैं रख दिया गया है हम लोगों के लिए, हम पढ़ें और समझें, क्योंकि छोटे या बड़े हम सभी कंस ही हैं। एक माने में इतना भगवान से विरोध नहीं है, लेकिन जीने की बहुत लालसा है ना, सबको जीने की लालसा है और सुख से जीने की लालसा है, और सबके दृष्टि में उसके कुछ कंटक हैं, वो चाहे अपने परिवार के लोग हों, चाहे दूसरा देश ही हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कंटक हैं कि ये हमारे भोग में बाधक है, ये हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारे ये चल रहा है, इसको दबाना है, इसको मारना है, ये करना है, और हमारे कुछ अपने हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, और हमारे ससुर हैं, जैसे वो सोच रहा था जरा संधो मम गुरु, तो हमारा मतलब ये सब जिए, ये सब सुखी रहे, और विपक्ष वाले सब मर जाएं, दुखी हो जाएं, यह विचार है मनुष्य मात्र का। भगवान ने गीता में इसको आसुर विचार कहा, दो भूत स्वर्ग लोकस्मिन दैव आसुर एव च, तो दैवो विस्तरतः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्लोक। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के जीव यहाँ रहते हैं, खासकर मनुष्यों के बारे में बोल रहे हैं। भूत स्वर्ग वो कोई पशु पक्षी जानवर के लिए नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में वो मनुष्य के विषय में भगवान कह रहे हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं यहाँ, दैव और आसुर, कुछ दैवी गुण वाले हैं, तो उनके विषय में तो मैं विस्तार से कह चुका है। आसुरम पार्थ में सुनो, हे प्रथा पुत्र, अब आसुर भाव वालों के विषय में सुनो। भगवान इस तरह से विस्तार करके बात कर रहे हैं गीता के 16वें अध्याय, हमको तो बहुत याद नहीं है। इसलिए भागवत सप्ताह में एक नियम है कि वक्ता को अपने पास से कुछ ऐसा हेल्पर रखना चाहिए जो बीच में श्लोक बताया करे, ऐसा लिखा गया है पद्म पुराण में। भगवान कहते हैं प्रवृतिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं कि असुर जो होते हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि किस काम में लगना चाहिए और किस काम को छोड़ना चाहिए, नहीं करने लायक काम को करने लगते हैं। भगवान के कहने का आशय ये है, केवल अज्ञान मात्र नहीं है, नहीं काम जो करना चाहिए उसमें लगे रहते हैं, और जो करना चाहिए उसमें बिल्कुल उनकी रुचि नहीं होती। प्रवृत्ति में चल निवृत्ति में चल, प्रवृत्ति का अर्थ है कि करने लायक काम वो नहीं करते हैं, और निवृत्ति में जिस काम से निवृत्त होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जैसे नो मेडिटिंग नो गर्मिंग ये जो है इसको निवृत्ति कहो, तो उनको न तो प्रवृत्ति मालूम है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, और न ये मालूम है कि तम्बाकू आदि नहीं खाना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, जो करना चाहिए उसको नहीं करते, और न शौचम उनमें कोई सफाई शुद्धि नहीं होती है, न आंतरिक शुद्धि न बाह्य शुद्धि, और न आचार विचार और न सत, न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। चाहिए तो है ही, और उनके विचार क्या होते हैं और बोलते क्या रहते हैं इसको भी भगवान कहते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रमेश्वरम अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम है, तो खुलम खुला बोलते हैं, संसार बाई चांस हो गया, इसको कोई रचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, अनिश्वर जगत आहुर अनिश्वर, ये इस विश्व को कहते हैं कि अनिश्वर है, मतलब इसका कोई कंट्रोलर नहीं, कोई दंड नहीं देगा, जिसके मन में जो करना हो करो, कोई बनाने वाला नहीं, और इस संसार को उत्पन्न करने में कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, यह केवल स्त्री पुरुष के संयोग से संसार बना हुआ है। और संसार जो उत्पन्न हुआ है वह केवल इंद्रिय सुख देने के लिए बना हुआ है, भोग बस। ये भगवान कहते हैं कि आसुर विचार वाले ऐसे बोलते हैं, जैसे कंस बोल रहा है इसको मार करके ऐसे जीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, यही प्लान चलता रहता सारी दुनिया। एतम दृष्टि अवष्टव्य अवष्टव्य नष्टात्मानं प्रबुद्धय प्रभवंत उग्र कर्मण क्षयाय जगतो हिता। भगवान कहते हैं इसी दृष्टि में अवष्टव्य, कि ईश्वर नहीं है और ये संसार जो बनाया गया है भोगने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। वास्तव में और फाइनल वो बोलते हैं असत्यम, ये संसार है ही नहीं वास्तव में, ये झूठा है, मिथ्या है, असत्य और इसका कोई ईश्वर नहीं है। इसी दृष्टि में टिके रहते, दृष्टि का अर्थ है समझ, ज्ञान, बस उनका यही ज्ञान। अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का अर्थ होता है बिल्कुल टिक जाना, इसी विचार में टिके रहते हैं। नष्टात्मान वो आत्मघाती जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, अल्प बुद्ध बहुत थोड़ी बुद्धि वाले, बहुत भयानक कर्म करते रहते हैं। छया जगतो हिता, वे जगत के अहित, जीवों के महाशत्रु, वे सब वही कर्म करते हैं जिससे संसार नष्ट हो, इसी कर्म में लगे रहते। आज के युग में भगवान के इस वाक्य को प्रकट समझा जा सकता है, किस तरह छाया क्षय के लिए काम करते हैं, से विभिन्न प्रकार के बम बना लेना, विस्फोटक द्रव्य इकट्ठा कर लेना, क्षय करने में बहुत तेज है। यहाँ बम विस्फोट करो, यहाँ करो, ये करो, वो करो, करो, छया जब प्रभवंती उग्र कर्मा, बहुत भयावह कर्म करते हैं, जीवों की हत्या करना या मनुष्यों की हत्या करना, कहीं भी किसी को मारो, कुछ भी करो, प्रभवंत उग्र कर्माण, उग्र कर्माण, भयानक कर्म करते हैं। जीवों का वध इतने बड़े पैमाने में संसार में हो रहा है, देख कर सुन करके कलेजा कांप जाता है, और ये चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसुर विचार वाले लोग बढ़ गए। इस तरह से आसुर विचार का मूल कारण है ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति माने कि भगवान हैं और जगत के उत्पादक हैं, इसको नियमन में रखते हैं, इसका पालन करते हैं, तो वह व्यक्ति डरेगा ईश्वर से। कुछ लोग तो कहते हैं कि ईश्वर का प्रचार करने वाले लोग मनुष्यों को बेकार कर देते हैं, क्योंकि मनुष्यों के मन में भगवान का भय छा जाता है, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते, ऐसा कहते हैं। ये ईश्वर का भय दिखाना ठीक नहीं है, छोड़ो स्वतंत्र सब लोग काम कर, लेकिन वो तो प्रभवंति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता। भगवान कहते हैं दम्भ मान और मद से युक्त रहते हैं और उनकी कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। कामम आश्रित दुष्पूरम मोहा ग्रसित गृहत्वा असद ग्रहण प्रवर्तते असुचि व्रता, और मोह छाया हुआ रहता है असुरों के मन में। मोह का अर्थ है मैं ये देह हूँ और देह के अनुगत मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा 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 करते रहो, सो मोह कहा गया। इस मोह पर आधारित उनके कुछ असद ग्राह होते हैं। ग्राह का अर्थ होता है दृढ़ विचार, हमें ये प्राप्त करना है। असद ग्राहन भगवान का असद आग्रह मन में बसा होता है, हमें ये लेना ही है, हमें इस तरह से भोजन करना है कि हमारा शरीर मोटा हो, तंदुरुस्त हो। इसके लिए चाहे पक्षी मारा जाए, पशु मारा जाए, कुछ भी हो, हमको अपना शरीर पोषना है, इसको मोह कहते हैं। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ देह है और ये टिकेगा नहीं बहुत काल तक। मनुष्य को सोचना चाहिए जितना दिन भगवान जिंदगी दिए हैं, ठीक ठीक पदार्थ खा करके, भगवान का प्रसाद खा करके, रूखा सूखा ही हो तो क्या ये शरीर चला लेना ठीक है, लेकिन भगवान के नियम की अवहेलना करके किसी का मांस डालना मुख में और शराब डालना ये उचित नहीं है, इसका बहुत घोर दंड भोगना पड़ेगा। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि मोहात गृहीत्वा असद ग्रहण, मोह से शरीर में अतिशय अहंता और परिवार में ममता होने से बस वही असद ग्रहण में लगे रहते हैं। हमको यह खाने को चाहिए, हमको यह चाहिए, हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, केवल भोगना जानते हैं, असद ग्रह, और सबका मूल कारण है मोह, अज्ञान। इस तरह से असुर पड़े रहते हैं। कंस के इस प्रसंग में ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है, भगवत गीता की बात, मोह मोहात गृहित्वा असद ग्रहण प्रवर्तन्ते असुचि व्रतं। असद ग्रह या आग्रह जिसको कहते हैं मनुष्य के मन में बसा होता है। मनुष्य के मन में आग्रह छाया रहता है कि हमारे लिए जरूरी है क्योंकि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, और वो कामम आश्रित दुष्पूरम, वो वस्तु उनको मिल भी जाती है तो उसे संतोष नहीं होता है, पूरे संसार को पूरी टेक ओवर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी करना चाहते हैं। पहले के असुरों का विचार दिया गया है भागवत में, कई बार अटैक करते हैं स्वर्ग पर भी, देवराज इंद्र को हटना पड़ता है जो भगवान के प्रतिनिधि। तो ये असुर भाव है, सर्वदा इंद्रिय तृप्ति और शरीर को अजर अमर रखने की भावना। भगवान जो नियम बना दिए हैं तो उस नियम का पालन करना चाहिए, और कोई कितना भी शरीर की रक्षा करना चाहे क्या कर सका है? जैसे हिरण्यकश्यपु था तो वो तो बहुत बहुत उपाय किया, बहुत उपाय किया कि मैं न मरूं, अरे क्षत्र सम्राट रहूं, मेरे सामने कोई युद्ध में न टिके, और ब्रह्मा जी ने कह भी दिया ठीक है, लेकिन भगवान नरसिंह देव ने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो कौन से जरासंध, शिशुपाल या हिरण्यकश्यपु, ये असुरों में सरदार कहे जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार की प्रवृत्ति वास्तव में इस समय बहुत ज़्यादा है मनुष्यों में। असुर विचार, चिंताम अपरिमेयम च प्रलयांताम उपाश्रिता, चिंताम अपरिमेय, अनंत चिंता, चिंता का कोई और छोर नहीं होता है, चिंता बनी रहती है, ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, जो नहीं मिली हुई वस्तु होती है उसके विषय में जो थिंकिंग है उसको चिंता कहते हैं, ये भी लेना है, ये करना है, वो करना है, उसको भगवान पर अपरिमेयम। अच्छा, वो भी मान लीजिए जवानी में दो चार साल के लिए चिंता हुई कि ये लेना है वो लेना है तब भी ठीक है, तो भगवान को तो कहते हैं प्रलयांतम उपासे, चिंतम का विशेषण दे रहे हैं प्रलयांतम, प्रलय तक चलने वाली, तो प्रलय का यहाँ अर्थ है मृत्यु तक वही सोचते रहते, मरने तक संसार को भोगने का ही प्लान रहता है असुरों में। प्रलयांतम उपाश्रित, चिंताम उपाश्रित का अर्थ प्रलयांतम, चिंताम उपाश्रित, कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चित, कामोपभोग परमा, इंद्रियों के सुख के भोगों, इंद्रियों के भोगों में लगे रहते हैं, खाना पहनना सूंघना देखना छूना इसी में लगे रहते, बस परमा का अर्थ परायण, उनके जीवन का लक्ष्य होता है कामोपभोग, कामोपभोग परमा, और इतना ही नहीं एतावत इति निश्चिता, वे कहते हैं बस बस यही जीवन का फल है, खाओ पियो मौज करो बस, यह एतावत इति निश्चिता, थोड़ा भी संदेह उनके मन में नहीं होता है, इतने मूर्ख है, थोड़ा भी संदेह होता है कि भाई मृत्यु है और जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, कुछ तो सोचते, लेकिन इति निश्चिता, इति निश्चिता है बहुत ही, जैसे किसी वस्तु पर सील मुहर लगा दे, बस बस और कुछ नहीं। और ईश्वर का भजन करने वाले, भगवान के भजन करने वाले लोगों को वो समझते हैं ये सब कि क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो किसी बच्चे को यदि भक्त बना दिया जाता है तो असुर को कहते हैं क्या सीखा है, ओहो इसको इंजॉय करने से मना कर दिया, इसको भोग भोगने से मना कर दिया, ओहो इसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। और कहते हैं कि ईश्वर का भजन वे लोग करें जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, बाकी जो समाज के लायक हैं उनको तो बस भोग भोगना चाहिए, इसी के लिए जन्म हुआ है, ऐसा एतावत इति निश्चिता, इस विचार में वो दृढ़ रहते हैं, उनको कोई डिगा नहीं सकता, इति निश्चिता। बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं, बहुत प्रचार करते हैं कि इसके लिए जीवन है, इसके लिए जीवन, आशा पास सतैर बद्धा मोह काम क्रोध समास होता है, ऐसा कुछ है कि आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायण, वो अनेक आशाओं में बंधे रहते, आशा का बंधन लगा रहता, आशा पास सतैर बद्धा, ये पाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, यह करना है, लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं है वो हमेशा आशा में लगा रहे, से निश्चिंत होकर कुछ समय भगवान का भजन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार का दृश्य मतलब संतोष कैसा होता है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के धाम में कुछ कुछ झलक इसकी मिलती रहती है, जैसे वृंदावन धाम है, अभी अभी सावन बीता, कोई भी व्यक्ति घूमा होगा और देखा होगा तो हजारों हजारों साधु महात्मा, कहीं अन्न बांटा जा रहा है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं कथाएं हो रही हैं, जो भी हो अपने तरीके से हो, लेकिन यह एक मार्ग है कि छोड़ो संसार के भोगों की लालसा, भगवान का भजन करो। तो हजारों हजारों लोग रासलीला में बैठते रहते हैं, भगवान को देखते हैं, अभिनय देखते हैं भगवान का, यही मार्ग वास्तव में समीचीन है। पर कुछ ऐसे रजोगुणी स्थान हैं इस पृथ्वी पर, ज़्यादा ऐसे हैं ऐसे रजोगुणी स्थान, वहाँ पर शांति से बैठ करके भगवान का नाम नहीं ले सकते, वे स्थान रजोगुण भरते हैं और अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। पर वृंदावन धाम ऐसा है कि यहाँ पर घूमने पर इच्छा हो जाती है कि ओहो ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये कथा में बैठ सैकड़ों जगह कथाएं होती हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान की लीला देखते हैं, अभिनिविष्ट रहते हैं। एक भक्त है राधा जीवन प्रभु, अलाछुआ से आए थे यहाँ, तो वे एक दिन गए अपने पुत्रों के साथ रासलीला देखे, तो मैं आया लास्ट ईयर की बात है, तो उससे पूछा मैं, छोटा बच्चा था श्री राम नाम, तो तुम क्या देखे वृंदावन में, तो कहता रियल कृष्ण देखो, इंग्लिश में बोलता है, तो मैं पहले नहीं समझे कि रियल कृष्ण क्या कह रहा है, वास्तविक कृष्ण बोलता था रियल कृष्ण, आई सा रियल कृष्ण, मैं रियल कृष्ण देखे कहाँ पर थे, तो वो नाच रहे थे, ही वॉज विथ राधा रानी, रियल कृष्ण, उसको एकदम विश्वास था कि वही कृष्ण है, मैं छोटा सा बच्चा रियल कृष्ण देखा है, देख करके प्रभावित। तो कुछ स्थान ऐसा होता है वास्तव में जहाँ पर ईश्वर की आराधना ही होती रहती, चाहे कोई परिक्रमा कर रहा हो, चाहे भागवत सुन रहा हो, चाहे रासलीला देख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं केवल कल कारखाना ठाए 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 चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ पर ये सामान लोड करो, ये ट्रांसफर करो, यह लोड करो, ये दो वो दो ये दो, और प्रभुपाद जी कहते हर 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 कार्य चल रही है, बस चल रही है, वहाँ की चेतना दूसरी है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवत धाम का सेवन करना चाहिए, और पांच महासाधनों में एक यह भी है मथुरा वास। आज भगवान के अंतर्हित हुए 5000 से भी अधिक साल हुए, लेकिन धाम धाम है वास्तव में, कितने हजारों हजारों जीव हैं आकर के भगवान से जुड़ते हैं, इस भूमि में यह गुण है। तो भगवान ने ये राष्ट्र आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं कि आशा पास सतैर्वत, अनेक हजारों हजारों आशा में बंधे रहते, आशा भर केवल है, पूरी नहीं होगी, आशाएं लगी रहती है, ये होगा ये होगा ऐसे होगा ये पाऊंगा ये पाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा खासकर वोट में, जब वोटिंग होता है तो कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और जानते हैं कि कोई एक ही जीतेगा, जब वोटिंग होता है तो कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और जानते हैं कि कोई एक ही जीतेगा, लेकिन प्रचार में इतना नारा बोलना, इतना पंपलेट छापना, ये करना, आशा पास सतैर्वत, और अन्य प्रकार की भी बहुत बहुत आशाएं होती हैं। काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के ही दास रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, इहंते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचय, और उनके जीवन में क्रिया क्या देखी जाती है, अन्यायन अपि अर्थ संचयन इहंत, अन्याय से भी उनको पैसा चाहिए, जैसे भी हो बस पैसा चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए घर द्वार जितना, अन्याय ना। इसके तरह भगवान यह कह रहे हैं कि ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य को पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, वस्तु कमाना चाहिए, लेकिन न्याय, न्याय का अर्थ है उसके लिए जो शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, ऐसे काम करे, बिजनेस करे या सर्विस करे, ये करे वो करे, ऐसे ढंग से जब कमाए तो उसको न्याय की कमाई कहते हैं। और भगवान कहते हैं अन्यायेन अर्थ संचयन इहं, अर्थ संचय करते हैं। ये बात हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, विशेष करके पाश्चात्य देशों में, किस तरह से लोग केवल अर्थ संचय पर पड़े हुए हैं और सब छोड़ करके मरने के लिए। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि एक माता जी मरी एक शहर में, इलाछुआ में, तो वो अपने बिल्लियों के लिए $3 million दी, 30 लाख डॉलर बिल्ली के लिए, और उनके रहने के लिए जो घर था बंगला था वो तो था, इस तरह का विचार, खैर वो तो दया ही मानी जाएगी कि बिल्लियों के लिए जरूरी है, तो बिल्ली के लिए, क्योंकि उसका कोई संतान था नहीं, तो बिल्ली पोसी थी, 4 बिल्लियाँ, $3 million, ये सरकार के यहाँ भी ये सब लिखित है, उसको दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, निकालने वाले तो मनुष्य होंगे, लेकिन ले लेकर को बिल्लियों की सेवा में देते रहते हैं, वो तो पता नहीं न्याय अन्याय क्या था, लेकिन वास्तव में अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए, वो धन बुद्धि को नष्ट कर देता है, अन्याय नार्थ संचयन। लेकिन सब कुछ मनुष्य करे, लेकिन भगवान कहते हैं कि पतंति नरके सुचल, वो श्लोक कैसे है, ये काम प्रसक्ता है काम भोगेशु पतंति नरके सुचल, लेकिन भगवान ने कहा कि जितने भी काम भोग में आसक्त लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में, ये असुचव नर के पतन थी, ये सब नरक में गिरते हैं। तो प्लान सफल नहीं हो पाता और सूची नरक में गिरते हैं। इस पर एक बार एक भक्त ने पूछा था कि कुछ सूची नरक भी होता है क्या? नहीं, भगवान नरक का ही विशेषण दे रहे हैं, नरक मात्र ही असूची है, बहुत खराब जगह है। वहाँ एक बार भी आज तक जब से नरक बना झाड़ू नहीं दिया गया, या जहाँ तहाँ मल मूत्र भरा हुआ है और हड्डी आदि कुछ प्राणियों को सताया जाता है, असुचि नरक में गिरते हैं। और इस तरह से अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार बल दर्प काम क्रोध के प्रायण होते हैं, तो ऐसे लोग मामात्म पर देह सु प्रद्विषंतो व्यसु, ये कहते हैं अपने देह में उनके देह में भी मैं रहता हूँ, दूसरे के देह में भी मैं रहता हूँ, लेकिन मुझसे द्वेष करते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। तो तान अहम दृष्टान कुर्रन संसारेश नराधमान छिपाम अजस्र अशुभान आसुरसी एव जोनिस, तो मैं ऐसे लोगों को आसुरी जोनियों में ही पटकता हूँ। आसुरी जोनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्त अधमाम गते। तो इस तरह से नरक में भगवान तो पटकते ही हैं, फिर अधम जोनियों में जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए। मैं जब कंस की बात कह रहा था तो इस असुर संपदा का ध्यान आया, पर मुझे तो याद नहीं है, चाहिए भक्तों को कि इसको मिला करके और समाज में इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि भगवान पहले कह चुके कि दैवी संपद विमोक्ष है बंधाया असुरी मता, असुरी विचार से बंधन होता है, बहुत दुख होता है। और यहाँ भी कहते हैं कि प्रसक्ता काम भगवसु पतंती नरकेश, नरक में गिरते हैं। तो जितने मनुष्य हैं ये सब अपने लिए नरक का रास्ता खोज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो अप्रस्तुत पर आइए कि कंस से अक्रूर जी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि राजन सम भाव से काम करना चाहिए। तो वास्तव में अक्रूर जी का जो ये उपदेश है वो हम लोगों के लिए है और बहुत ही उपादेय है, फर्स्ट क्लास का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ये मान कर चलना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो कोटा किए हैं, जो निर्धारित किए हैं, वो मिल करके ही रहेगा, और जो नहीं किए हैं तो हम केवल अन्याय करके पाप की गठरी ले जाते हैं, वो भोग मिलते नहीं हैं, नहीं मिलेंगे। शुभ आदमी का एक अच्छे आदमी का कर्तव्य है कि भगवान के अनुशासन में रहे, और जो चीज़ जैसे भगवान ने रचा है उसको ऐसे स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए। तो कितना भी प्रयास करे तो शरीर को तो अजर अमर बना नहीं सकता, शरीर बूढ़ा होगा ही और शरीर एक दिन जाएगा ही। अब कंस जैसा व्यक्ति ये सोचे कि नहीं नहीं किसी भी तरह से मैं नहीं मरूंगा, शरीर को बचा करके ही रहूंगा, और केवल अपनी दृष्टि अपने लोगों में हो, जरासंध में द्विध में संबर में और बाण में जिसकी दृष्टि ये हमारे अपने हैं। उसके मुख से निकल रहा था कि संबर हो नरको बाण हो मय वकृत सौहृदा, मई एवं मुझको ही वो मानते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं। फिर कौन अच्छे व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं तुमसे? ये सब संबरो नरको बाणो ये सब खल थे, असुर थे, इन सब का वध किया गया। बाणासुर का तो वध नहीं हुआ लेकिन उसके भुजाओं को भगवान ने काट दिया, और नरकासुर का वध किया प्राग ज्योतिषपुर, और संबर का वध किया प्रद्युम्न जी, ये सब मारे गए। और इन सब के विषय में कंस कह रहा है ये हमारे हितैषी हैं, ये हैं, ये हैं, इनकी सहायता से मैं सबको मारूंगा विपक्ष को और पृथ्वी को भोगूंगा। इस तरह का थिंकिंग, इस तरह का विचार बहुत दूषित चेतना का परिचायक। भगवान में मन लगाने को सोचना चाहिए कि सब इतना जप करूंगा, इतना भागवत पढ़ूंगा, इतना साधु सेवा करूंगा, इतना यहाँ दान दूंगा, परिक्रमा करूंगा, ये करूंगा, जैसे अक्रूर जी मनोरथ करते हैं वही वास्तव में सीखना चाहिए। कंस का मनोरथ जो यहाँ वर्णन किया गया तो इसको शास्त्र में हेय कहते हैं, संस्कृत में हा शब्द का अर्थ होता है छोड़न त्यागना, और हे शब्द का अर्थ होता है त्याज त्यागने लायक, और उपादेय शब्द है इसके विरुद्ध उप आदे, आदे का अर्थ ग्रहण करने लायक, उप का अर्थ है प्रेम से निष्ठा से ग्रहण करना चाहिए। जब किसी विचार को हम ग्रहण करते हैं अपना हित समझ करके तो उसको उपादेय कहते हैं, और जिसको अहित समझ करके छोड़ते हैं उसको हे कहते हैं। तो शास्त्रों में दोनों विचार इसीलिए दिए गए हैं कि हम ग्रहण कर सके और छोड़ सके, क्योंकि ऐसा विचार जैसे छोड़ने वाला विचार है। कंस को दिखाया गया कि वो इस तरह से मनोरथ कर रहा है, इस तरह से प्लान बना रहा है, सब गलत, तो मनुष्य को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए, और अक्रूर जी जैसा विचार रखना चाहिए। तो आते ही इस वृंदावन धाम में हम लोग आते हैं ट्रेन पर बैठे या घर से चले तभी मनोरथ हो कि ऐसे परिक्रमा करूंगा, और करते भी हैं प्राय हम लोग ऐसे ही कर, मैं यहाँ परिक्रमा करूंगा, जप करूंगा, मैं क्लास सुनूंगा, भगवत सुनूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, इस तरह का मनोरथ बहुत शुभ मनोरथ है और यह बहुत ही उन्नत चेतना का परिचायक। इस तरह रास्ते में सोचते हुए आदमी चले तो वास्तव में यही भक्ति और सिद्धि की अपेक्षा मनोरथ में अधिक सुख मिलता है। लोक में तो जो लौकिक मनोरथ होते हैं वो तो मनोरथ मात्र ही रह जाते हैं, पूरे तो होते नहीं हैं, तो जब तक मनोरथ रहता है तब तक वो सुख देते हैं, लेकिन भगवान मनोरथ ऐसा है जो मनोरथ के समय तो सुख देता ही है और फल भी उतना ही आनंदमय होता है। अक्रूर जी जितना मनोरथ करते समय सुखी थे उससे भी ज़्यादा सुखी हो गए जब भगवान का स्वर्ण मिला। लेकिन इस जगत में संसार में ये हिसाब नहीं है, मनुष्य मनोरथ करता है, कहीं मान लीजिए लौकिक मनोरथ करे, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये इस तरह से खाऊँगा, ऐसे सोऊँगा, ये करूँगा, लेकिन जब वो खाता है तो उतना मज़ा नहीं आता है उसको, ऐसे मिलूँगा, ऐसे बात करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, लेकिन जब मनोरथ सिद्ध होता है तो सिद्ध काल में वो सब उतना उचित नहीं होता है कुछ भी, तो मनोरथ काल में वो केवल थोड़ा सुख दे पाता है, सिद्धि काल में नहीं। लेकिन भगवान के विषय में जो मनोरथ किया जाता है वो सब समय सुख देता है, मनोरथ काल में भी और सिद्धि काल में भी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति का मनोरथ दिया जा रहा है। कभी कभी मन में शंका हो सकती है क्या जरूरत है कंस के मनोरथ को लिखने की, यहाँ ये कहने की, किसी भक्त के मन में संशय हो सकता है, लेकिन शास्त्रकार श्रील व्यास देव भगवान बहुत ही सोच समझ करके इस बात को रख रहे हैं कि यह भी एक नमूना पेश होना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप का विचार दिया गया है भागवत में या कंस का विचार दिया गया, त्यागने में सुविधा पड़ती है इन सब बातों को सुनने से, और ग्रहण करने में सुविधा हो तो श्री गोपी जनों का या राजर्षि भरत जी का और सब भक्तों का विचार दिया गया है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और त्यागने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल दिखाया गया है, ऐसे त्यागना, ऐसे त्यागना, अगर नहीं तो ये फजीहत होगी, इस तरह से मारे जाओगे, ये होगा, वो होगा, नरक में गिरना पड़ेगा। तो अक्रूर जी इस तरह से समझा रहे थे कंस को कि महाराज इतना अभिनिविष्ट मत होइए, कृष्ण बलराम को मैं ला दूंगा लेकिन लाने के बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं, इसलिए आप सम रहिए। और अक्रूर जी का तो मनोरथ सफल हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपका मनोरथ पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा तो पूरा हो ही गया, तथापि आज्ञा करोमि ते, मैं जानता हूँ कि आप मरेंगे आने के बाद भगवान के, फिर भी मैं आज्ञा का पालन करूँगा क्योंकि मेरा मनोरथ तो सफल होगा ही, मैं तो ब्रज पथ पर गोकुल में जाऊँगा। मन में सोच रहे थे कुछ भी हो तुम मरो चाहे जियो, हमारा तो काम हुआ है, जो तुम मरने पर ही लाद दिए हो तो मैं क्या करूं। यद्यपि इनके कहने का आशय है कि मेरा जाना उचित है ब्रज में, लेकिन कृष्ण बलराम को यहाँ लाना उचित नहीं है, तथापि आज्ञा करूंगा, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ब्रज में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं ये बात, फिर भी कृष्ण बलराम को लाऊंगा ब्रज से मथुरा, आप कह रहे हैं। तो इस तरह से अक्रूर जी कंस को समझाए अपने दोष का मार्जन करने के लिए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री शुकवाच एवं आदिश्य चक्रूरम मंत्रिणश्च विसृज्य सह प्रवेश गृहम कंस तथा अक्रूर स्वमालयम। इस तरह से कंस अक्रूर जी को, मंत्रियों को और चकार से और सब लोगों को जो वहाँ रात में मीटिंग में आए थे जुटे, सब एक साथ नहीं, अक्रूर जी से जब बात कर रहा था तो और लोग नहीं थे, अलग अलग कक्ष में अलग अलग फोन रखा होगा, वहीं पर बात कर रहा है। ये भी इस रूम में अक्रूर जी से मिला, उसमें मंत्री से, महावत चारों आदि से बड़े हाल में मिला, और सब रुके रहे क्योंकि सब जानते थे कोई सीरियस मैटर चल रहा है, राजा कुछ मंत्रणा कर रहा है, तो सब लोग रुके हुए थे, शायद कहा भी होगा कि अभी आप लोग रुके, हम थोड़ा अर्जेंट बात कर रहे हैं अक्रूर जी। तो अक्रूर जी से जब बात हो गई तब इसके बाद सबको बहुत आदर से विदा किया, ऐसा कभी विदा नहीं किया, शायद उस दिन अपनी कार दे रहा होगा कि जाओ छोड़ाओ इनको, चारुण जी को उनके डेरे तक छोड़ाओ, मुस्टिक को भी छोड़ाओ, ये करो वो करो, ऐसा करता होगा, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विसृज्य, विसृज्य का अर्थ है सबको भेज करके, राजा को ये जरूरत नहीं थी कि सबको भेज करके तब अपने घर जाए, वो राजा अपनी इच्छा से जाएगा जिसको जाना होगा जहाँ जाएगा, लेकिन आज इसको बहुत गरज थी, बहुत आदर दे रहा था, इसलिए सबको भेजा अशत वाप तो 12 बज गए, रात हो गई, ठीक है सॉरी, आराम कीजिए, अब जाइए आराम कीजिए, आराम कीजिए, और अपनी गाड़ी दे रहा था, अपना रथ दे रहा था, कहने का आशय है कि अब जाइए आराम से और ध्यान रखिएगा जो मैं कहा उसकी तैयारी में लग जाइए। तो मंत्रियों को, चारुंड आदि पहलवानों को और बाद में अक्रूर जी को भी, अक्रूर जी को भी भेजा। तो अक्रूर जी को भेजने का आशय है कि उनको वो रथ दिया और अक्रूर जी वो रथ ले करके घर गए। अक्रूर जी ने कहा कि रथ रहने दीजिए, मैं भोर में आऊँगा तो यहीं से चला जाऊँगा। तो वो कहा कि नहीं नहीं जल्दी जाइए और रथ अपने घर ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे नंदगांव गोकुल में तो ये सब लोग मिलाएंगे कि डिपार्चर कहाँ से हुआ है। अगर हमारे यहाँ से आप जाएंगे तो सबको शंका हो कंस के घर से रथ चला है, नहीं शुरू से ही अक्रूर के घर से रथ चला हुआ है ये प्रचार होना चाहिए। इसलिए आप रातों रात ले जाइए, वहीं अपने घर के पास रखिए रथ। और आपको रात में जाना हो या भोर में जाना हो, जब भी आपकी इच्छा हो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जल्दी कीजिए, ये मेरे कहने का, जल्दी जाइए, शीघ्र जाइए, ले जाइए रथ। तो अक्रूर जी रथ लेकर के गए और उनको काहे को नींद आने जाए उस मनोरथ में भगवान को देखने के लिए। तो एकादशी की रात थी, एकादशी को तो वैसे ही जागरण किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे रात भर अश्रु बहाते रहे, पुलकित शरीर भगवान का कीर्तन किए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। और भोर होते ही चल दिए, पारण वगैरह नहीं किए, और वो खाने की और एकादशी के व्रत की पूर्ति पर ध्यान नहीं गया। अब पूर्ति पर ध्यान देने की जरूरत क्या थी, जिसको भगवान मिलने वाले हैं वो एकादशी देखे, ये एकादशी द्वार से कुछ भी कृष्ण को पाने के लिए किया जाता है, और जब भगवान मिलने वाले हैं तो अब व्रत पूर्ति करें, तो भोर में चल दिए। अथवा श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उसी रात में क्यों नहीं गए जब कहा कि शीघ्र जाइए, तो वो कहते हैं कि वर्तमान ज्ञान आदि ना, रास्ते का ज्ञान आदि नहीं था, तो रात में कहाँ जाओ, अभी अंधेरी रात थी, चतुर्दशी को शिवरात्रि थी जिस दिन धनुष जग का समापन था, तो फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, वैसे ही रात्रि अंधकार में थी, तो इसलिए वो नहीं गए। अथवा इसलिए भी नहीं गए कि अगर वे रात भर चल करके सवेरे पहुँचते तो सवेरे भगवान वन में चले जाते। ये प्रश्न होता है कि वन में जा करके भी भगवान से भेंट कर सकते थे, तो नहीं, वहाँ ये सब घोड़ा रथ देख करके गऊँ भी दुख जाती, भागती और भगवान को परेशानी होती, इसलिए वन में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने उचित समय सोचा था कि शाम को पहुँचूंगा, शुरू से ही वे ऐसा सोचे थे, लेकिन मनोरथ में इतने मग्न थे कि अपने आप ही शाम हो गई। प्लान तो था कि शाम को पहुँचे, उस समय भगवान वन से लौटते हैं गऊँ चरा करके, तो अस्थाई मिलन होगा, और गऊँ वन में ले जाते समय तो अस्थाई मिलन नहीं हो सकता है। भगवान कहते कि चाचा जी ओ घर आए हैं तो हम तो गाय चराने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है चलिए, आपको बाबा नंद स्वागत करेंगे और हम लोग तो आप 8-10 घंटे के बाद आए, ऐसा हो सकता था, इसीलिए अक्रूर जी शाम को ही पहुँचना चाहते थे, स्थाई मिलन होगा भगवान से, ऐसे देखेंगे ऐसे करें। अक्रूर जी इस प्रकार आए अपने घर। अब कथा होगी कि केसी को कंस ने भेजा था, केसी किस तरह ब्रज में आया और भगवान ने उसका वध किया। तब इसके बाद नारद जी आएंगे भगवान के पास, जैसे कंस से उन्होंने कहा ऐसे कृष्ण से कहेंगे। और अक्रूर नारद जी के चले जाने के बाद तब देवमासुर का वध करेंगे भगवान। कल ये तीन लीला कही जाएगी, केसी दमन, इसलिए भगवान का नाम केशव प्रसिद्ध हुआ ब्रज में, लिखा गया विष्णु पुराण में कि केसी का उन्होंने वध किया, इसीलिए उनको केशव केशव कहना चालू किया लोगों। वैसे केशव का एक अर्थ है कि जो केश का श्रृंगार करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वह केश, अथवा जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक। तो प्रातः काल केसी का वध किया भगवान ने यही वृंदावन में, केसी तीर्थ, केसी घाट जिसको कहते हैं। और दोपहर के पहले पूर्वाह्न में नारद जी आए, और दोपहर के बाद ब्रज में लौटने से पहले भगवान ने देवमासुर का वध किया। इस तरह से आचार लोक संगति बैठा। कल के बाद अक्रूर जी का मनोरथ कहा जाएगा। कल नारद जी की स्तुति है भगवान के प्रति, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच केशेतु कंस प्रहितः खुरैर्महीम् महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूताभ्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः केशेतु कंस प्रहितः खुरैर्महीम् महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूताभ्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः केशेतु कंस प्रहितः खुरैर्महीम् महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूता ब्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था, उस दिन कंस केशी को आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में, कृष्ण बलराम का वध कर दो, हनन करो। तब केशी चला। उस दिन रात्रि में ये बात हुई थी, इसलिए रात में अपने घर में रहा, सवेरे निकला प्रातः का। केशी कम भाग्यशाली नहीं था क्रूर जी से, निकला मथुरा से ब्रज में आने के लिए। और भगवान गाय चराने के लिए निकले थे सवेरे, बिल्कुल सवेरे सवेरे लेट हो गए। इस पर एक प्रश्न उठता है कि इतना जल्दी कैसे चला गया वो मथुरा से नंदगांव के पास या वृंदावन। ये घटना तो यही हुई। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ गोचारण के लिए अपने डेरा बदलते रहते थे। नंदगांव मूल घर था भगवान का, लेकिन वहाँ से गौओं को चराने के लिए घूमते थे, क्योंकि एक स्थान पर गौएं तो सुरक्षित नहीं रह सकते थे, उनके लिए पानी चाहिए, घास चाहिए। 9 लाख गायें थीं तो एक जगह रखा जाए तो एक दिन में सारा घास खत्म कर, इसीलिए 84 कोस ब्रज में गौओं को ले लेकर के घुमाना पड़ता था। और कृष्ण 9 लाख गाय नहीं चराते, कुछ गौएं थी उनको भी चराते थे और बाकी और जगह बिखरी रहती थी। जैसा कुछ लोग जानते होंगे किस तरह गाय भैंस रखने वालों को इधर उधर जाना पड़ता है, 4 महीने पहाड़ में चढ़ाना पड़ता है गौओं को, पहाड़ पर के बाद फिर घर पर आती हैं। केवल गौशाला देखने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण किस तरह गाय चराते थे, है तो गौएं बाहर जाती ही नहीं है, चराने खत कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो लोग चराए हैं, चराते हुए देखे हैं पूरा सालों भर का दृश्य, वो समझ जाएंगे भगवान की लीला। तो नंद गांव में वे रहते थे, मूल घर था, लेकिन उस समय वे इसी जमुना के किनारे रह रहे थे। तो केशी आया, केशी तू कंस प्रहित, तू शब्द लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, केशी तू, तू शब्द को ही हम लोग हिंदी में तो कहते हैं कभी कभी, अरे वह तो क्या कुछ, केशी तो का अर्थ है मतलब अरिष्ट से भी ज्यादा बदमाश थे, ये कहने का आश्चर्य। इसके पहले भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था जो वृषभ के रूप में आया था, और केशी तो, केशी महादुष्ट था और अरिष्ट से भी अधिक बलवान था। इसी बात को कहने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी तुकार का प्रयोग कर रहे, तू सब कैसे यह महाखल था और महाबलवान था, इसी का विशेषण आगे देते हैं। पहली तो बात ये बता रहे हैं कंस प्रहित, स्वयं दुष्ट, स्वयं महादुष्ट, तदुपरि कंसेन अधिष्ट, महादुष्टेन कंसेन अधिष्ट। एक तो स्वयं ही महादुष्ट था और ऊपर से महा महादुष्ट कंस का आदेश हो गया था, स्पेशल आदेश हुआ था। इतना सोच समझ करके आदेश पहले नहीं किसी को दिया था, नारद जी के कुछ कहने के बाद केशी को ये भेजा था। कंस प्रहित, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं स्वतः एवं महादुष्ट पुनश्च दुष्टतार्थम महादुष्टेन कंसेन तत्र प्रेषित इत्यर्थ। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, एक तक करेली दूजे नीम पर सवार। करेला कितना तीता होता है स्वाभाविक, लेकिन करेला के पौधे को नीम पर चढ़ा दिया जाए तब कितना तीता होगा। नीम और करेला मिल करके और ज़्यादा तीत हो जाएंगे, तिक्त हो जाएंगे। इसी तरह यह महादुष्ट तो था ही, ऊपर से राजकीय ऑर्डर मिल गया था, आदेश मिल गया था, ऐसा करो, चला। इतना वेग से चला वहाँ से, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते मनोजव मनस जव वेग जस स मनोजव। जव का अर्थ होता है वेग, मन के समान उसका वेग। मन कितना जल्दी कहीं जा सकता है, इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी चला। मन के समान वो कहाँ से चल सकता था, लेकिन किसी बात की उपमा तब दी जाती है जब अत्यंत अर्थ में होता है, इसका मतलब बहुत तेज चला। अक्रूर जी चले तो दिन भर लग गया, मंद गति से चले थे, रथ पर घोड़े हाँक नहीं रहे थे, लेकिन यह घोड़ा, यह समय घोड़ा बन करके ही आएगा। ब्रज में जो भी असुर आते थे तो कुछ न कुछ का, या तो गोप का वेश बनाकर चाहे पशु का, वे लोग सोचते थे कि हमको वे लोग इस तरह से नहीं मारेंगे, हम धोखा से मार डालेंगे। घोड़ा कौन मारने जाए, यहाँ तो गधा भी कोई नहीं मारता है, इसलिए धेनुकासुर गधा के रूप में कि हमको नहीं मारा जाएगा। कोई बैल बनकर आ रहा था, कोई बछड़ा बनकर आ रहा, कोई पक्षी बनकर, कोई कुछ बनकर, तो यह घोड़ा बनकर आया। महाहय, हय का अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। महाहय बहुत बड़ा घोड़ा बनकर आया, और इतना तेज चल रहा था, और इतना भारी शरीर था इसका कि खुरैर महीन निर्जरयन, खुरों के अपने टॉप से इतना उछाल उछल कर चलता था, घोड़ा जैसे चलते हैं देखे हैं। बहुत दूर दूर तक छलांग मारते हैं, तो उससे पृथ्वी निर्जरयन नितरम जीर्णम कुर्वन, इसका अर्थ है कि जहाँ पैर मारता था तो वहाँ कई टन का चेकांग उखड़ जाता, चट्टान। केवल थोड़ा सा खुर नहीं धसता था जैसे अन्य पशुओं का धसता है, पूरा ये जो मशीन खानती है आजकल वैसे लगाता था, तो ये इसको निर्जरयन कहते, नितरम जरयन पृथ्वी को पीड़ित कर रहा था। जिधर गया दौड़ते हुए भारी भारी खुदाई करता जा रहा था, इतना भारी, तो उसको ये ध्यान नहीं था कि पृथ्वी विदीर्ण हो रही है या कुछ हो रहा है। ये रोड पर भी चला होता, हाईवे पर, तो वो अभी खत्म ही हो गया। उसके टाप के बाहर से निर्जरयन नहीं, सटा व धूता विमान संकुलम। सटा कहते हैं गर्दन के बाल को, केश को, और यही केसी नाम की व्युत्पत्ति दी जा रही है इसको, केसी इसीलिए, इसी कारण से उसको केसी कहा गया। उसको बहुत लंबा लंबा केश था गर्दन पर, घोड़े के गर्दन पर केश होता है, सिर पर नहीं। मनुष्यों के सिर पर केश भगवान ने दिया है, लेकिन घोड़ा के गर्दन पर केश रहता है। और जो चला तो इतना लंबा और घना उसका केश था, चलने से एक तो और केश हिल रहे थे, और इतना हिल रहे थे कि बादल छंट जा रहे थे उसके वेग से, झोंका से, और देवताओं के जो विमान थे वो भी दुर्घटना होते होते बचते थे, इधर उधर सब तहस नहस होते थे, ये संभाल लेते थे, गिरा कोई नहीं विमान। लेकिन सटा व धूता विमान संकुलम नभ, नभ का विशेषण है कि नभ को कैसा कर रहा था, अपने गर्दन के केसों से बादलों को और विमानों को तितर बितर कर रहा था। वाह, कितना बड़ा शरीर होगा और कितना उसमें वेग है। क्या कोई आदमी ऐसा है जो केवल केस झाड़े और बादल और विमान तितर बितर हो जाए? तो जब लड़ेगा तो क्या करेगा, केवल केस की फटकार से यह दशा हो रही है। सटा अवधूतानी अभ्राणी विमानानी जस्मिन तत् नभ, संकुलम का अर्थ व्याप्त, तब विमान सब इधर उधर हो जाते थे, भरे थे विमान देवताओं के, देवता लोग विमान से देखने आए थे कि केसी क्या करता है, भगवान किस तरह इसका वध करते हैं। लेकिन वैसा मारा बादल, ऐसा केस झाड़ा के बादल और विमान सब इधर उधर हो, हेषित भी सीता खिला, देखिए इसका उपद्रव। एक तो पैर से पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा था, केश से बादल और देवताओं को डिस्टर्ब कर रहा था, और बोली से हेषित भीषिता खिला, हेषित ही तो अश्व जाति शब्द है, अश्व जाति का जो शब्द है उसको हेषित कहते हैं, उसी को हिंदी में हिनहिनाना कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है हेसित, तो उसके हेसित से उसके हिनहिनाने से भीषित अखिल सारा विश्व डर गया। तो जितनी दूर में आवाज जा रही थी उतने जगह के लोग थरथर थरथर कांप रहे थे। घोड़े की भयंकर आवाज भीषित अखिल और विशाल नेत्रो विकटा से कोटरो बृहद गलो नील महान बुद्धोपम। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत मनोयोग के साथ चिंतन कर रहे हैं केसी का, और सभा में बैठे हुए श्रोताओं के भी मन पर ले जा रहे हैं उसका चिंतन करने। विशाल नेत्र विशाले नेत्रे जस्य स, जिसके दोनों आंखें बहुत विशाल, जब शरीर विशाल था तो आंख विशाल होगी ही, और वैसे घोड़े की आंख कुछ बड़ी होती है और हाथी से तुलना करके देखा जाए तो घोड़े की आंख बड़ी होती है। हाथी का देह बहुत बड़ा होता है लेकिन आंख बहुत छोटी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए उसको छोटी आंख दिया कि कहीं बड़ी आंख से अपने को देख लेगा तो उसका अभिमान और बढ़ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा है, इसीलिए वो अपने को देखता नहीं है हाथी कभी। एक तो छोटी छोटी आँख है और आँख के पास ही इतना लंबा चौड़ा कान भगवान ने बना दिया है को ढके रह तो देख नहीं पाता। और शायद हो सकता है कि यह मनोविज्ञान हो कि वो अपने शरीर के साइज को देख ले तो फिर उन्माद न हो जाएंगे। इसकी आंखें बहुत विशाल थी। अरे विशाल का चिंतन अब मुक्त प्रग्रह न्याय से करना चाहिए, अब श्रोता पर ही छोड़ दिए कितना विशाल होगा आप लोग सोचते रहिए। विकटास से कोटरो और मुख उसका था मतलब विकट बहुत भयावह, वृक्ष के कोटर की तरह भया, वो चूंकि वृक्ष या कोटर थोड़ा लंबा होता है इसीलिए ये उपमा दे रहे हैं कि घोड़े का मुख लंबा होता है, तो विकट आस से कोटर मुख, कोटर मुख बहुत भयावह। बृहद गलो और गला बहुत बृहद था दोनों तरह से, एक तो बहुत लंबी गर्दन, बहुत लंबी गर्दन थी और बहुत मोटी, इसको बृहद गला का। और नील महान बुद्धोपम और वह नीला था घोड़ा, नीले महाबादल की तरह वह था, उसकी उपमा अभी दे रहे हैं नील महान बुद्धोपम नील महा अम्बुद उपम। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसमें उपमा अगर मैं दूं तो यही कहूंगा कि नीले अर्थात काले बादल के समान, वो भी बड़ा बादल ऐसा वो लग रहा है। दुराशय, ये तो शरीर का वर्णन कर रहे हैं, अब मन का वर्णन कर रहे हैं। दुराशय आशय का अर्थ होता है इच्छा, आ का अर्थ है सम्यक और शय का अर्थ होता है सोना। जो हृदय में सोई रहती हैं इच्छाएं इनको आशय कहा गया है। ये दुराशय था दुःआशय, इसका इरादा बहुत खराब, कृष्ण को मारने की इच्छा थी, इसी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुराशय, बहुत ही भयावह इच्छा मन में थी दुराशय। कंस हितम चिकीर्षु, फिर मानसिक गति का वर्णन कर रहे हैं, कंस का हित करने का इच्छुक था, क्योंकि कंस ने उस दिन बताया था कि कृष्ण बलराम के हाथ से मेरी मृत्यु है। उसने पूछा होगा केसी ने कि कृष्ण बलराम के हाथ से मृत्यु है जरा ठीक से बताइए, उसमें भी बलराम के हाथ से है कि कृष्ण के हाथ से, जिसके हाथ से है उसी को मारूंगा। तो उसने बताया था उसमें जो कृष्ण है उसी के हाथ से मेरी मृत्यु, क्योंकि वही आठवां है। नारद जी ने बताया कि बलराम तो सातवां है तब वो कृष्ण को ही मारने का इरादा कर दिया था। और कंसस्य हितम चिकीर्षु, कंस का हित करना चाहता, हित क्या था कंस का, कंस मरने न पाए जीवित रहे मेरे मित्र, तो उसने कहा था कि मित्र मैं मरना नहीं चाहता, तो कंस का हित चाहता था मतलब कंस का जो वैरी है, कंस के मृत्यु का जो कारण है उसको मारना चाहता था। देखिए कई कई विशेषण दिया जा रहा है, कंस का भेजा हुआ दुराशय और कंसस्य हितम चिकीर्षु, कंस का हित चाहता था। यह इसका यह अर्थ है कि मथुरा से जब से चला तब से केवल यही सोचता रहा कि कंस को जीवित रखना है, क्योंकि कंस जैसा सज्जन इस विश्व में नहीं मिल सकता है, उसको जीना चाहिए। ये दुराशय इस तरह से दूषित इच्छा मन में पोष रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी जाए कुछ कंसेप्शन अपने मन में ढोता रहता है, विचार रखता है। इस संसार में देखते हैं ना, सब जगह अपनी अपनी दृष्टि होती है, और हो सकता है कि अपनी दृष्टि अच्छे लोगों के प्रति बुरी हो और बुरे लोगों के प्रति बहुत अच्छी दृष्टि हो, आप तो देवता हैं महान हैं, हो सकता है कहता है। और ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति को कोई आदमी कहता है ये महादुष्ट है और कोई कहता है को बिल्कुल सज्जन। केसी की दृष्टि में कंस जैसा महात्मा इस विश्व में कोई नहीं, कंस को जीना चाहिए परंतु कृष्ण को तत्काल मारा जाना चाहिए, वो ठीक नहीं ये इसको दुराशय दूषित आश बहुत गलत इरादा, कंस का हित करना चाहता हितम चिकित्सा। इसलिए ब्रजम संबंध से जगाम कंपयन नंदस्य ब्रजम जगाम, तो नंद के ब्रज में गया, पता लगा लिया कि नंद महाराज की गौवें इस समय कहाँ रहती, सुनंद ब्रज का, नंदस्य ब्रजम जगाम, तो ब्रजम का ही विशेषण फिर दे रहे कंपयन, ब्रजम कंपयन, कंपयन ब्रजम जगाम, गया ब्रज में तो ब्रज को पूरा आंदोलित करता हुआ, कंपाता हुआ गया। ब्रज को कंपाने का दो भाव है कि जब चला ब्रज में तो भूमि में भूकंप आ गया, सब घर द्वार वृक्ष आदि कांपने लगे, जब उछड़ कर तो चलता था ऐसे तो पृथ्वी हिल जाती, दहल जाती। अथवा इसका एक अर्थ ये भी है कि ब्रज में जितने जीव थे उसकी बोली सुन करके उसको देह करके सब थर थर कांपने लगे, कंपयन ब्रजम कंपयन जगा में, कौन ब्रज में, नंदस्य ब्रजम, नंद के ब्रज में गया। यह बहुत निकट की लीला है इसी वृंदावन की, जमुना के तीर की। तंत्रासयंतम भगवान स्वगोकुलम तदहे सितैर बाल विघुल नितांबुदम आत्मानमाजो मृगयंतम अग्रणी रूपा भयत स्वनदन मृगेंद्रवत। श्री भगवान ने देखा, क्या देखा, तम केसी को भगवान ने देखा, कथम भूतम केसी ब्रजम त्रास्व गोकुलम त्रासयंतम, कि हमारे गोकुल को इस तरह से त्रस्त कर दिया है, कर रहा है, सारा गोकुल त्रस्त था। गोकुल से तत्पर है सारी गौएं, अब खाना पीना छोड़ करके कान खड़ा करके और एकदम त्रस्त आंखों से देखने लगी, पशु सब विकल हो गए, पक्षी स्तब्ध हो गए और मनुष्य डर करके इधर उधर भागने लगे सब। सभी को ये भावना हो गई कि हमको निश्चित मारेगा, बहुत बड़ा संकट आ गया, तो इस तरह से गोकुल त्रस्त। और उस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने देखा स्व गोकुल अंतरास्यम, तो मेरे गोकुल को, मेरा गोकुल है, इसका मतलब मेरा प्रेमास्पद। भगवान का जिन लोगों के प्रति अतिशय प्रेम, भगवान जिन में आसक्त हैं, सब तरह से पूछते हैं, ऐसे गोकुल को भगवान ने देखा कि त्रास दे रहा है, दुख दे रहा है। तब हेसितर बाल विघुल नितांबुदम, और भगवान ने देखा कैसे त्रास दे रहा था, हेसितर उसकी हिनहिनाहट से लगता था कि कई लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना भयावह बोल रहा है। तद हेसितर त्रासयंतम और बाल विघुल नितांबुदम, और फिर भगवान ने देखा आकाश के तरफ, तो ऐसे स्वाभाविक जो बादल चलते हैं वायु के वेग से, तो भगवान ने देखा ऐसे नहीं चल रहे हैं बादल, कभी कोई इधर उधर हो रहा है आकाश में, भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है बाल विघुर नितांबुदम, तो भगवान यह भी देख लिए कि अपने केसों से बादलों को ऐसे कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा था, बाल इतने उड़ रहे थे कि वो बादल छट रहे थे, अथवा जानबूझकर के सचमुच को उपद्रव कर रहा हो, मरना ही है तो पैर से, केस से, दांत से, सबसे मारे, इस तरह से गया। वो सोचता था कि शायद ऐसा करेंगे और कठोर बोली बोलेंगे तो कितने लोग उसको सुन करके मर जाएंगे, ऐसा होगा, या कृष्ण की रक्षा करने वाले जो लोग हैं जैसे बलराम आदि, वे लोग हमारी बोली से डर कर भाग जाएंगे, जब कृष्ण अकेले बचेगा तब मैं मारने में समर्थ होऊंगा, इसके लिए भी इतना हिनहिनाहट कर रहा था, बोल रहा था। आत्मा नमाजो मृगयंत मृगयंत, भगवान ने देखा कि वो मुझको खोज रहा है, आया था गोकुल में लेकिन वो आत्मानंद मृगयंतम, भगवान ये कैसे जान गए कि वो इनको खोज रहा है, वो जान गए, कुछ हिनहिनाहट करता होगा तो कुछ बोलता होगा कि अच्छा अच्छा मैं दिखा दूंगा, मैं अरिष्ट नहीं हूँ मैं अरिष्ट नहीं हूँ और पूतना नहीं हूँ, अघासुर नहीं हूँ कि ऐसा कर दे, तो भगवान समझ गए कि ये तो हमको खोज रहा है, आजो मन युद्ध में, तो और सब लोग तो भाग रहे थे इधर उधर भाग रहे थे, बाद में भगवान ने सांत्वना दिया, डरिए मत डरिए मत डरिए मत, और सबको अपने पीछे करके पीठ के पीछे और कहे चलिए हम चलते, तो जमुना के किनारे किनारे छिपते हुए सब लोग जा रहे, और ये पता नहीं लग रहा था कि कहाँ पर गरज रहा है, निकट आ गया था बिल्कुल केसी तीर्थ के पास।